लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, लगभग 6 महीने से युद्ध से त्रस्त गाजा में मानवीय सहायता सामग्री पहुंचाने के प्रयासों में हो रही कठिनाइयों में बेहतरी नजर नहीं आ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि गाजा में लड़ाई के दौरान आम नागरिकों को हताहत होने से बचाने के लिए इसराइल को अपने सैन्य तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा, साथ ही जरूरतमंद आबादी के लिए जीवन रक्षक मानवीय सहायता आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाना होगा। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता अधिकारियों ने गाजा में इसराइली सेना की हवाई हमलों में परोपकारी संगठन वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 सहायता कर्मियों की मौत की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि गाजा में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व में हुए जघन्य आतंकी हमलों के बाद ये लड़ाई शुरू हुई, जिसे 6 महीने पूरे हो रहे हैं। फलस्तीनी चरमपंथियों ने जिस तरह से उन भयावह घटनाओं को अंजाम दिया, उन्हें किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, और न ही इसके बाद इजरायली कार्रवाई में फलस्तीनी आबादी को सामूहिक तौर पर दंडित किए जाने को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। गाजा में अब तक 32,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं।
More than half the population, over 1 million people, are facing catastrophic hunger. Children in Gaza today are dying for lack of food and water. This is incomprehensible and entirely avoidable.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि आधी से अधिक आबादी, 10 लाख से अधिक लोग विनाशकारी स्तर पर भूख का सामना कर रहे हैं। भोजन और पानी की किल्लत से बच्चों की मौत हो रही है। ये समझ से परे है और इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। यूएन प्रमुख ने कुछ दिन पहले इजरायली बमबारी में मानवीय सहायता संगठन वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कर्मचारियों के मारे जाने पर गहरा क्षोभ प्रकट किया। इस हमले के बाद मानवीय सहायता कर्मियों ने सुरक्षा खतरों की वजह से अपने रात्रि सहायता अभियान 48 घंटों के लिए स्थगित कर दिए थे, जिन्हें अब फिर शुरू कर दिया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की आपदा राहत समन्वय एजेंसी ने कहा है कि इजरायली सेना की जांच में पाया गया है कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला एक गंभीर गलती थी और वो गलत पहचान के कारण हुई। इस बीच जिनीवा स्थित मानवाधिकार परिषद ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें गाजा में भुखमरी जैसे हालात को कथित रूप से युद्ध के एक तौर तरीके के रूप में इस्तेमाल किए जाने की निंदा की गई है। साथ ही इसराइल को हथियार बेचे जाने पर पाबंदी की भी मांग की गई है।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने रूस द्वारा यूक्रेन में 2 साल से जारी युद्ध और उस पर कब्जे को खत्म करने का आह्वान किया है, ताकि देश रूस के आक्रमण के कारण बने गहरे चखमों विभाजनों को भरने का काम शुरू कर सके। यह रूसी कब्जा फरवरी 2022 के हमले के बाद डोनेस्क, खेरसान, लुहांस्क और जापोरिजिया क्षेत्रों तक बढ़ गया है। मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने ऐसे मामलों का भी जिक्र किया जिनमें क्रीमिया में लोगों को उनके ही देश यानी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए भर्ती किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने इस सप्ताह जिनीवा स्थित मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद 2 वर्षों के दौरान हर दिन हृदय विदारक घटनाएं देखने को मिली हैं। उन्होंने चिंता जताई कि दुनिया इस संकट के लिए उदासीन हो गई है। वोल्कर टर्क ने ध्यान दिलाया कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण के 2 वर्षों में 10,500 से अधिक लोग मारे गए हैं और 20,000 से अधिक घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हताहतों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है। वोल्कर टर्क के अनुसार यूक्रेन में मानवीय त्रासदी बहुत लंबे समय तक चली है। इस क्रम में उन्होंने रूसी महासंघ से लड़ाई पर विराम लगाए जाने की अपनी पुकार फिर दोहराई।
म्यांमार की सेना द्वारा फरवरी 2021 में सत्ता पर कब्जा किए जाने के बाद भड़का तनाव और संकट पूरे देश में लोगों को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है और यह संकट क्षेत्र में भी फैल जाने का जोखिम है। मौजूदा संकट के समाधान में ऐसे हालात बहाल किया जाना जरूरी है जिनमें म्यांमार के लोगों को अपना मानवाधिकारों का प्रयोग मुक्त रूप में और शांतिपूर्ण तरीके से कराने का मौका मिले। साथ ही सेना द्वारा की जा रही हिंसा को बंद किया जाना और राजनीतिक दमन को भी रोका जाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। संयुक्त राष्ट्र के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार 4 अप्रैल को सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों से यह बात कही। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
सहायक महासचिव खालिद खैरी ने म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए देश में मौजूद रहकर लोगों की मदद करते रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने और अधिक अंतर्राष्ट्रीय एकता व समर्थन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन आसियान व अन्य क्षेत्रीय हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। खालिद खैरी ने सुरक्षा परिषद में कहा,
The expansion of armed conflict throughout the country has deprived communities of basic needs and access to essential services.
पूरे देश भर में लड़ाई के फैलाव ने समुदायों को बुनियादी चीजों और जरूरी सेवाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया है। इस संकट का लोगों के मानवाधिकारों और बुनियादी आजादियों पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। सशस्त्र बलों द्वारा अंधाधुंध हवाई बमबारी और विभिन्न पक्षों द्वारा गोलाबारी किए जाने की खबरों के बीच हताहत होने वाले आम लोगों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने राखीन प्रांत की स्थिति के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई, जो कि म्यांमार में सबसे निर्धन क्षेत्र है और इसी प्रांत में अधिकतर रोहिंग्या आबादी है। इनमें अधिकतर लोग मुसलमान हैं और उन्हें म्यांमार की नागरिकता से वंचित रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में रोहिंग्या लोगों पर सरकारी बलों द्वारा व्यापक दमन के बाद 10 लाख से अधिक रोहिंग्या लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेने के लिए पहुंचे थे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता और कार्यवाही में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कहा है कि बिना विस्फोट किए बिखरी हुई युद्ध सामग्री की चुनौतियों से देश व समुदायों को हमेशा के लिए मुक्ति दिलानी होगी। उन्होंने आग्रह किया है कि युद्ध से बदहाल हो चुके और हिंसक टकराव से उबर रहे समुदायों का दैनिक जीवन इन विस्फोटक अवशेषों से प्रभावित होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को हर वर्ष 4 अप्रैल को बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता और कार्यवाही में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
बारूदी सुरंगों, विस्फोटक सामग्री और युद्ध के बाद बिखरे हुए आयुध अवशेषों से उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए खतरा उपजता है जो दुनिया भर में सशस्त्र टकरावों में फंसे हुए हैं। इनमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए जोखिम उत्पन्न होता है और महत्वपूर्ण मानवतावादी व विकास सहायता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। लाखों बारूदी सुरंगें नष्ट की गई हैं और हजारों वर्ग किलोमीटर की भूमि को सुरक्षित बनाया गया है, मगर अभी भी लाखों सुरंगें बिछी हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है। यूएन प्रमुख के अनुसार बारूदी सुरंग की चुनौती से निपटने में जुटे संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी साहस का परिचय देते हुए साझेदार संगठनों के साथ मिलकर इन जानलेवा हथियारों के सफाई के लिए प्रयासरत हैं। यूएन महासचिव ने अपने संदेश में सदस्य देशों से यूएन बारूदी सुरंग कार्रवाई रणनीति को समर्थन देने का आग्रह किया है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
इस जीवन की खुशबू चले। जीवन मेरा ही, अकेला नहीं तू, मैं तेरे साथ, मैं तेरा रक्षक, मैं तेरा दीपक, तू ही है मेरी बाती, तू ही है मेरी बाती।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन में शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के विभिन्न देशों में मानवतावादी कार्यों में संलग्न पेपल फाउंडेशन के सदस्यों, न्यासियों और प्रबंधकों का साक्षात्कार कर उनके शैक्षणिक और लोकोपकारी कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। रोम में आपकी वार्षिक तीर्थ यात्रा के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते मैं हर्षित हूं। इन शब्दों से संत पापा फ्रांसिस ने परमाधीक्षी न्यास के सदस्यों और प्रतिनिधियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, विभिन्न शैक्षिक, धर्मार्थ और प्रेरितिक परियोजनाओं में आपका समर्थन निर्धनों, शरणार्थियों, आप्रवासियों और आजकल युद्ध और हिंसा से प्रभावित लोगों की बड़ी संख्या सहित कई लोगों के समग्र विकास को बढ़ाता है। साथ ही उन्होंने कहा, विभिन्न विकासशील देशों में सामान्य जन और लोक धर्मियों, समर्पित धर्म संघियों और धर्म समाजियों, गुरुकुल छात्रों और पुरोहितों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां उन्हें रोम में परम धर्म पीठीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का अवसर देती तथा अधिक प्रभावी ढंग से सुसमाचार की गवाही देने में सक्षम बनाती है। संत पापा ने कहा कि इस प्रकार परमाधीक्षी न्यास के सदस्य संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी संत पापा की स्थानीय कलीसिया के निर्माण संबंधी पहलों में महान योगदान प्रदान करते हैं और आपकी इस उदारता के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, मानवतावादी और लोकोपकारी कार्यों के लिए बल कैथोलिक विश्वास से मिलता है, इसलिए विश्वास को कलीसियाई जीवन में सहभागी होकर, संस्कारों को ग्रहण कर तथा प्रार्थना में लीन होकर सुदृढ़ किया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि न्यास के सदस्यों की रोम तीर्थ यात्रा 2025 में मनाई जा रही कलीसिया की जयंती की तैयारी में प्रार्थना वर्ष के दौरान हो रही है। बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित प्रेरित चरित ग्रंथ के शब्दों को उद्धृत कर उन्होंने कहा कि प्रार्थना में दृढ़ता से हम शनै शनै येसु और अन्य लोगों के साथ एक हृदय और एक प्राण बन जाते हैं, जिससे एकजुटता सिंचित होती तथा हमारी दैनिक रोटी साझेदारी में तब्दील हो जाती है। रोम शहर के परिसर में स्थित रोम की एक पल्ली की भेंट कर संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने की तैयारी कर रहे लगभग 200 बच्चों को आशीर्वाद दिया, उनके अनगिनत सवालों का जवाब दिया तथा उन्हें विश्वास पूर्वक अच्छे और बुरे समय में प्रार्थना में ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने बच्चों के संग लगभग एक घंटा व्यतीत कर प्रार्थना की पाठशाला का उद्घाटन किया। वस्तुतः 2025 में मनाए जा रहे कलीसिया के जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों को आमंत्रित किया है कि वे 2024 का वर्ष प्रार्थना में व्यतीत करें। इस सिलसिले में संत पापा फ्रांसिस विभिन्न समूहों का साक्षात्कार कर प्रार्थना के महत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। बच्चों के साथ विचारित विभिन्न विषयों में से संत पापा फ्रांसिस ने सबसे पहले माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों और धर्म शिक्षकों को हर चीज के लिए धन्यवाद कहने के महत्व पर जोर दिया। तथापि उन्होंने उनसे कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन। बच्चों से संत पापा ने कहा, हर चीज के लिए धन्यवाद कहना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं और धन्यवाद नहीं कहते हैं और फिर क्षमा करें या उनका अभिवादन नहीं करते हैं, तो क्या यह अच्छा है? इसलिए उन्होंने कहा, पहला शब्द धन्यवाद होना चाहिए। इसके अलावा कृतज्ञता दिखाने के लिए उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि जब उचित हो तो अनुमति मांगे और यह भी पहचाने कि कब माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में तीन शब्द अति महत्वपूर्ण हैं और वे हैं धन्यवाद, अनुमति और क्षमा। इटली के कंपानिया प्रांत से अपनी पंचवर्षीय पारंपरिक मुलाकात हेतु वेटिकन आए कैथोलिक धर्माध्यक्षों से गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि लोगों के मेषपाल बनना ही उनका दायित्व है क्योंकि लोग ही उनकी संपत्ति हैं। संत पापा ने कहा कि विश्व के सभी धर्माध्यक्षों के समक्ष सुसमाचार की गवाही देना एक चुनौती है जिसका सामना वे लोगों के साथ संवाद में लिप्त होकर करें क्योंकि लोग ही उनकी यथार्थ संपत्ति है। वेटिकन रेडियो से बातचीत में कंपानिया प्रांत के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माधीश अंतोनियो दी दोन्ना ने बताया कि 11 अप्रैल की मुलाकात में मेषपाली पहलू, लोगों के साथ संबंध तथा सुसमाचार की चुनौतियां जैसे विषयों पर संत पापा फ्रांसिस ने प्रकाश डाला। महाधर्माध्यक्ष ने बताया कि संत पापा फ्रांसिस के साथ धर्माध्यक्षों की मुलाकात 2 घंटों तक चली जिसके दौरान सभी धर्माध्यक्षों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत की तथा संत पापा को न केवल विश्वास में बल्कि सबसे अधिक आशा में सुदृढ़ करने के लिए धन्यवाद दिया। महाधर्माध्यक्ष दी दोन्ना ने कहा कि हमें विश्वास और आशा में सुदृढ़ करने के अतिरिक्त संत पापा ने हमें साहसी पुरोहित होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक धर्माध्यक्ष होने के साथ साथ एक पुरोहित अथवा एक ईसाई होना भी आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि सर्वाधिक अहम बात जो संत पापा ने कही वह यह कि धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को अपने क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करना चाहिए तथा उनकी कठिनाइयों को आसान करने के तौर तरीकों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत पापा फ्रांसिस का चिंतन ईश प्रजा के साथ धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के संबंध पर रहा जिन्होंने हमें भेड़ की गंध वाले चरवाहे बनने के लिए आमंत्रित किया जो अपने रेवड़ की रखवाली करते तथा उनमें से एक को भी नहीं खोते हैं। यूरोपीय संघ के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने यूरोपीय संघ में गर्भपात की पहुंच को शामिल करने के वोट पर गहन दुख और चिंता जताई है तथा आगामी यूरोपीय चुनावों में जिम्मेदारी से मतदान करने के लिए विवेक विकसित करने और शिक्षित करने की अपील की है। यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर में गर्भपात की पहुंच को शामिल करने के पक्ष में यूरोपीय संसद के वोट के बाद यूरोपीय संघ के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन कॉमेक्स के महासचिव फादर मानुएल एनरिक बारियोस प्रीतो ने आगामी चुनावों में जिम्मेदारी से मतदान के विवेक की अपील की है। प्रस्ताव पर मतदान के विरोध में यूरोपीय संघ के धर्माधीक्षों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए आधारों का स्मरण दिलाया गया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में गुरुवार को यूरोपीय संसद के सदस्यों ने 163 के मुकाबले 373 मतों के साथ यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर में गर्भपात की पहुंच को शामिल करने के प्रस्ताव पर मतदान किया था। फादर बारियोस ने इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मतदान से पहले यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों द्वारा अपने बयान में दिए तर्कों का स्मरण दिलाया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके विरोध का मुख्य आधार है गर्भपात को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता क्योंकि मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार है। उन्होंने रेखांकित किया कि इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए खासकर तब जब व्यक्ति असुरक्षित हो जैसे कि अपनी मां के गर्भ में पल रहा अजन्मा बच्चा। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।